खुदावंत के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो, क्योंकि खुदावंत भला है और खुदावंत यीशु मसीह का ये हुक्म है कि जिस घर में जाओ तुम एक दूसरे के लिए क्या चाहो, सलामती चाहो। हम सलाम कह सकते हैं तुम्हारी सलामती हो, या जो लफ्ज़ बहुत दफ़ा यहूदी एतबार में इस्तेमाल किया जाता था, शलोम, जिसका मतलब भी है खुदावंद में तुम्हारी सलामती हो या खुदावंद का इत्मीनान तुम्हारे साथ हो। ये वक्त में वो क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे शलोम, शलोम। ये उनका क्या था, एक दूसरे से मिलने का क्या था, तरीकाकार था। जैसे हम एक दूसरे को मिलते कहते हैं सलाम, सलाम जी, सलाम, सलाम जी। तो यहूदी एतबार में जो तमाम ईमानदार थे, वो जो यूनानी और अब्रानी, इब्रानी जबान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था शलोम, यानी खुदावंद का इत्मीनान या तसल्ली, या कह सकते थे सलामती तुम्हारे साथ हो। सो नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 5 बाप, उसकी 15 आयत से। पालूस रसूल के वसीला से हम सीख रहे हैं कि पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो के क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बात चलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहो। रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। हम पिछले दिनों में से सीख रहे हैं खुदावंद के कलाम में से कि हमें किस तरह चलना है, नादानों की तरह, नादानों की तरह चलना है, दनाओं की तरह। चेक कर रहा हूं कि सोते नहीं, किस तरह चलना है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह, दनाओं की तरह हमें चलना है, और दनाओं की तरह चलने के लिए खुदावंद का बंदा हमें पीछे पहले ही बता देता है कि रवैया कैसा होना चाहिए, तरीका कार या करदार कैसा होना चाहिए। नादान लोग किस तरह चलते हैं, हमने हाल ही में 5 बेवकूफ और 5 अकलमंद कुंवारियों के बारे में देखा था, जो आने वाले वक्त में जब खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया के साथ मुसीबत के दौर में जब आएगा, वो दूसरी आमद का वाकया है जो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल के मुताबिक उस सच को बयान किया है कि उस दौर में कैसा होगा, कि खुदा की बादशाही ऐसी होगी कि 10 कुंवारियों की मानद, 5 बेवकूफ और 5 अकलमंद। और दुल्हे के बारे में हमको बहुत दफा कहा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह उस चोर की मानद, उस रात की मानद आ जाएगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। सो हम ईमानदारों को बहुत दफा कहते हैं कि चोर की मानद से मुराद क्या, क्या यीशु मसीह चोर है? नहीं, चोर से मुराद जैसे चोर का पता नहीं चलता कि अचानक आ जाता है चुराने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह का भी उस वक्त जब दूसरी आमद होगी ऐसा ही आना होगा कि लोग हैरान और दंग हो जाएंगे, जिसके बारे में हम सब ईमानदारों को कहा गया है। मेरे साथ देखें पहला थसलीकियों उसका 5 बाप। यहां पर पालूस रसूल ईमानदारों को जो जमीन पर हैं, जो खुदावंद की कलीसिया है, उन सबको यूं कहता है पहली आय से, मगर ए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो। वो कलीसिया जानती थी, समझती थी, इस बात से वाकिफ थी, लेकिन हमें इन वक्तों, इन मौकों के बारे में समझने और जानने की जरूरत है, ताकि गौर से देखें कि हमने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। पहला थसलीकियों 5 बाप उसकी पहली आयत, इस वास्ते तुम आप खुद जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। सो पालूस रसूल यहां पर कहता है कि उन लोगों के साथ क्या होगा, कि ऐसा वक्त ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि सलामती है, अमन है, सुकून है, शांति है, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक नूह के दौर की तरह, नूह के दौर का जो तूफान आया वो आने वाले उस तूफान की तरफ इशारा है, उस आफत की तरफ। पानी से खुदा दोबारा दुनिया तबाह ना करेगा। नूह का तूफान आने वाली यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ क्या है, इशारा है कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो जमीन पर बहुत आफतें आएंगी, जैसे मिस्र में 10 आफतें आई, उनसे भी बढ़कर आफतें इस दौर में आएंगी और उन लोगों पर जो सलामती और अमन और कहेंगे कि कुछ नहीं होने वाला, उन पर नागहां आ पड़ेगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं। शरा के आगे कोई शर्म की बात नहीं, हम सब बहन भाई हैं, माँ हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, कि जब खुदावंद के इस निज़ाम के मुताबिक औरत बच्चा जनने को होती है, उससे पहले अचानक दर्द लगती है, जिसे कहते हैं पेन लग गई। सो वैसे ही पालूस रसूल कहता है कि जैसे उस औरत को जो बेटा या बेटी को जनने वाली है, उससे पहले जिसे कहते हैं पेन लगती है या दर्द लगती है, वैसा ही उस दौर में वो इसे बयान करता है कि लोगों पर नागहां अचानक, जिसके बारे में पता नहीं होगा, लोग कहेंगे सलामती है, खुशी है, खाओ पियो, फलो बढ़ो, शादी ब्याह करो, जैसे नूह के दौर में कर रहे थे, और आसमान की खिड़कियां खुली और तमाम लोग सवाए नूह के और उस तमाम जानवरों के जो बेड़े के अंदर थे तबाहो बर्बाद हो गए। तो लिखा है वो हरगिज ना बचेंगे। चौथी आयत, लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो। हम तारीकी में नहीं हैं, यानी कि हम तारीकी के फर्जंद नहीं हैं। हम जो यीशु मसीह पर निजात दहिंदा के तौर पर यकीन करते हैं, हम तारीकी के फर्जंद नहीं बल्कि नूर के फर्जंद हैं। किसके फर्जंद हैं? नूर के। तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। हम पर यह दिन चोर की तरह नहीं आएगा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुकर्रर फरिश्ते के साथ, नरसिंगे की आवाज के साथ आएगा, जो मुर्दा है, जो जिंदा होंगे, वो सब आसमान पर उठा लिए जाएंगे। सो ये वो वाक्या है जब यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में, जब वो जमीन पर आएगा, आफतों और बहुत सी दूसरी बातों का होना होगा। 5वीं आयत, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। रात और तारीकी, अबलीस और शरीर और जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, चाहे वो किसी भी कबीले से हो सकता है, कोई भी जुबान बोलने वाला हो सकता है, किसी भी मुल्क से हो सकता है, तारीकी के यानी के रात के, वो तमाम लोगों की तरफ इशारा है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। इसलिए बहुत दफा हम मसीहियों को याद है आपको एक बात कि कोई मसीही पैदा नहीं होता, मसीही बनने के लिए मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। तो हमें अपने लबों से खुदावन का इकरार करने की जरूरत है, हमें दूसरे अकीदों की तरह नहीं, पैदा हुआ तो उसी का होके रह गया। क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो, ना हम रात के, हम ना रात के हैं ना तारीकी के, पस औरों की तरह सोए ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। हमें औरों की तरह ना मालूम या इस बात के फरेब में नहीं रहना कि सोए रहें। सोए रहने से मुराद यही है, बाइबल मुकद्दस में बहुत दफा इस जुमले को इस्तेमाल किया जाता है, इसके पीछे जो सोच या जो मकसद है वो यही है कि रूहानी एतबार से सोए ना रहें बल्कि बेदार रहें, जागते रहें जिसे कह सकते हैं, सोए ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की अमीर का खौद पहनकर होशियार रहें। बस गौर से देखो कि हम किस तरह चलते हैं, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर, ईमान और मोहब्बत का बख्तर जो हमारे सामने होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को बेईमानी से और नफरत से और मोहब्बत, दौलत की जो जड़ है, दौलत जो कि बहुत दफा फसाद की जड़ है, उस मोहब्बत से, दुनिया की मोहब्बत से बाज रहें, बल्कि खुदाई मोहब्बत के बख्तर को लगाकर अपने आप को बचाते रहें, और निजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें कि हमारी निजात खुदावंद यीशु मसीह में है और उसने हमें खरीदा है। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकरर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। हम सब क्या हैं? निजात याफ्ता। सब निजात याफ्ता हैं जी, निजात पा चुके हैं ना जी। तो यहां पर जो पालूस रसूल बात कर रहा है कि हम निजात याफ्ता हैं, लेकिन यहां पर वो बात कर रहा है निजात को वसीला से हासिल करें, यानी कि जब वो आएगा हम जिस्मानी तौर पर इस गुनाह की दुनिया से अलहदा किए जाएंगे। सो बहुत दफा ये जुमले आदमियों को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा समझ में शक पैदा कर देते हैं कि निजात मिलने वाली है या मिल गई है। जब हम ईमान लाते हैं तो हमें निजात मिलती है, हमारा नाम किताबे हयात में लिखा जाता है। जब यीशु मसीह आएगा तो हमें इस दुनिया की तारीकी से निजात देगा, यानी कि अलहदा करके नूर में अपने जलाल में जगह देगा। तो निजात का लफ्ज जब जब भी बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है, कुछ दफा वक्ती निजात, मुझे खुदावन खुदा ने निजात का मतलब है महफूज करना, छुड़ाना, बचाना या किसी खतरे से रहाई देना। जब हम कहते हैं कि उस जेल में पकड़ा गया उसे रहाई हो गई, उसका क्या मतलब है? उसे उस कैद से निजात मिल गई। तो निजात के लिए तीन चार इस्तेमाल हैं, नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में। यहां पर जो इस्तेमाल है कि जब वो आएगा तो वो गुनाह के बदन से हमें निजात देगा, वो हमारी खातर इसीलिए मुआ के हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। पस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चुनाचे तुम ऐसा करते भी हो। तो सवाल ये है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम इस दुरुस्त इल्म को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्योंकि आज लोग, आज कलीसिया में सबसे बड़ी जो फिक्र की बात है यही है कि लोग निजात के बारे में सही इल्म नहीं रखते। कुछ कहते हैं कि पानी का गोता लेंगे तो निजात मिलेगी, कुछ कहते हैं नेक अमाल करोगे तो निजात मिलेगी, कुछ कहते हैं कि चर्च के तमाम सैक्रमेंट करोगे तो निजात मिलेगी, कुछ कहते हैं जी आपको मूसा के 10 हुक्म और 10 यकी दे दा यकी देनी होगी तो निजात मिलेगी। लेकिन बाइबल क्या कहती है? खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। ये वो निजात है जो गुनाह से हमें निजात यीशु मसीह ने दी है। सो एक दूसरे को इन बातों से तसल्ली दो। अब आपकी बारी है, क्योंकि तो मैं आप तक पहुंचाता हूं कलाम, आपकी बारी है। जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों तक पहुंचाया और शागिर्दों का काम था आगे तक लेके जाना, हमें सबको टीम की तरह काम करने की खुदावन के खेत में जरूरत है। निजात ईमान से है और किसी बात से नहीं। अगर होती तो फिर खुदावन यीशु मसीह को पैदा होने की जरूरत नहीं थी, खुदावन यीशु मसीह को दुख उठाने की जरूरत नहीं थी, खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर जान देने की जरूरत नहीं थी, सलीब में से उतरकर उसे कब्र में जाने की जरूरत नहीं थी, कब्र में से उठ जाने की, दोबारा जी उठने की जरूरत नहीं थी। अगर निजात होती तो 4,000 साल में जो इंसान बार बार कहते थे मैंने गुनाह किया, 2 बर्रे, 2 कुमरियां, ये बर्रा, ये बर्रा, ये बर्रा, ये बर्रा, ये बर्रा, खुदा उनको सादा तौर पर यही समझाना चाहता था, चाहे 10,000 कुर्बानियां भी गुजरान लो, तुम्हारी निजात आर्जी तौर पर इस गुनाह से हो सकती है। अबदी निजात सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से होगी। वो मसीहा, वो मसा किया हुआ आएगा और जो कोई उस पर ध्यान करेगा, यकीन करेगा, वो निजात पाएगा और हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो 4,000 साल में लोगों ने बहुत से कुर्बानियां की, लेकिन अबरानियों का मुसन्नफ कहता है उनकी निजात साल ही की होती थी। काहिन अपने लिए कुर्बानी करता था, एक साल के लिए ही वो खुदा की हजूरी में जाता था, जब जाता था अपने गुनाहों का कफारा देने के लिए, अगले साल फिर सालाना कुर्बानी और फिर माहाना कुर्बानी और फिर रोजाना कुर्बानी। जब जब वो खुदा की हैकल में जाते थे अपने आप को धोकर पाक साफ करते थे ताकि गुनाहों की माफी हो। अब हम जब इस दौर में देखते हैं तो यीशु के लहू से धुलकर हम सबको क्या किया गया है? धोकर पाक और साफ किया गया है। इसलिए ये तमहीदी सादा सच्चाइयां हैं जो बहुत दफा कलीसिया से इससे वाकिफियत नहीं है। कल मुल्तान आर्मी बेस में हम गए, वहां पर भी सादा सच लोगों ने कहा कि जी कभी किसी ने टाइम ही नहीं निकाला कि उनको बताया जाए कि वो कौन हैं, कि बताया जाए कि मसीह वाकया ही उनके अंदर रहता है, बल्कि ये नहीं, बल्कि इसके जी आपको मसीह को हासिल करने के लिए ये जतन करना होगा, ये काम करना होगा, ये काम करना होगा। सादा तौर पर कभी किसी ने बताया ही नहीं। और सादा लोग चाहते हैं सीखना, लोग चाहते हैं सीखना, लेकिन सवाल ये है सिखाने वाले। और उस तमाम कल की इबादत का जो निचोड़ है वो यही है कि वो मसीह में बहुत ही आला दर्जा रखते हैं लेकिन कोई बताता नहीं। इसलिए सारी बात इसी बात पर आ जाती है। यकूब कहता है, पतरस कहता है कि उस्तादों से ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। इसलिए मैं 5-10 मिनट लगाने से नहीं घबराता, आपको पूरी बात बताना मुझे लाजम है, क्योंकि इसलिए मेरे लिए हर पासबान के लिए बाइबल का मुताला जरूरी है, या ना कि सिर्फ पढ़ ली और बस ठीक है जी मैंने 5-7 साल पहले मुताला किया था, अब जरूरत नहीं। और उन लोगों की हालत से ऐसा ही नजर आता था। कि पासबान, अगर कलीसिया दूर है तो उसके पीछे पासबान का भी हाथ है, कि पासबान मेहनत नहीं करता, दुआ नहीं करता, खुदा की हजूरी में मूसा की तरह शिफायत नहीं करता, कलीसिया से और खुदा के खादम से। खुदा यीशु मसीह ने पूछना है, मेरे प्यारे लोगों, तुमने क्या किया? सो एक बार एक दूसरे को इन बातों से तसल्ली देनी है, और साथ में इस बात को भी याद रखना है कि हमारा मसीह जब आएगा तो हमसे पूछेगा, जो तोड़ा दिया है उसे किस तरह इस्तेमाल किया है। आप सबको कोई ना कोई तोड़ा मिला है। कल उस कलीसिया में ये बात देखी कि लोग कुछ खाना पकाने के लिए लगे हुए हैं अपनी जिम्मेदारी को, कुछ परस्तश के लिए लगे हुए हैं, कुछ बाहर टेबलों का इंतज़ाम कर रहे हैं, और ज़्यादा लोग अंदर इबादत कर रहे हैं। जब कलीसिया में नए नए ईमानदारों में, वो ऐसे लगता है कि 7 महीने पहले उन्होंने गिरजा शुरू किया और खुदा ने उनको पाकिस्तान आर्मी की जो एक कह सकते हैं कि एकेडमी थी, उस एकेडमी की जगह उनको गिरजे के तौर पर दे दी कि आप उसे गिरजाघर बनाकर इस्तेमाल करें। बहनों को जिनके खावंद हैं बेदार करने की जरूरत है। बेदार होने की जरूरत है क्योंकि वक्त नजदीक है। पालूस रसूल कहता है, वक्त को गनीमत जानो। जैसे इस वक्त में पता नहीं लगेगा कि उनकी हलाकत नागहां, यानी के बगैर उनको खबर दिए आ जाएगी, वैसे ही हमारे लिए भी नरसिंगा फूका जाएगा बगैर खबर दिए। दो वजूहात है खुदा कलीसिया को लेने के लिए आएगा यीशु मसीह। पहली, या तो कलीसिया ने अपना मकसद पूरा कर लिया है, या फिर कलीसिया नाकाम हुई है और खुदा खुदा उसे वापस ले जाएगा, ताकि उन 1,44,000 और 40,000 यहूदियों को इस्तेमाल करे अपना पैगाम देने के लिए, जो उसने अपने लिए रख छोड़े। शायद आपने पहले उसके बारे में कभी सुना ही नहीं कि खुदा ने अपने लिए कलीसिया के बाद ज़मीन पर वो ईमानदार रखे हुए हैं जो यहूदी होंगे, और वो मसीह के भेद को समझ जाएंगे और फिर वो गवाही देने के लिए दुनिया के कोने कोने में जाएंगे मुकाशवा की किताब के मुताबिक। लेकिन अफसोस, पासबान ये बातें नहीं बताते। इसलिए वो दिन आने वाले हैं, मेरे साथ देखें अमूस, हम इस बात पर ख़त्म करेंगे। वो दिन आने वाले हैं, अमूस नबी का सहीफा उसका 8 बाब, ये आपकी बाइबल ही में है। अमूस नबी का सहीफा, यूएल नबी के बाद अमूस उसका 8 बाब, 8 बाब उसकी 11 आय से। ग्यारह आयत, खुदावन खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहद डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहद, बल्कि खुदावन के का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर, शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदा के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। ये वो दौर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लोग तलाश करेंगे और कोई कलाम सुनाने वाला नहीं होगा। उसके लिए एक वक्त लगेगा क्योंकि तमाम सुनाने वाले आसमान पर उठा लिए जाएंगे, और ज़मीन पर ऐसी जहालत और नागहां हरकतें होंगी जो बयान से बाहर हैं। ठीक लूत की जिंदगी के वाक्य की तरह, सदूम और गमूरा जैसा हालत होगी इंसानों की, गुमराही में, बदी में, गुनाहगारी में, बुत परस्ती में, जादूगरी में, हर तरह की शहवतों में। उस वक्त खुदा के कलाम का कहद होगा, रोटी और पानी का नहीं, रोटी पानी खूब होगा, हर एक चीज खूब होगी, लेकिन कोई कलाम सुनाने वाला ना होगा। इसलिए हमें जो मौजूद हैं, कलाम सुनाने वाले भी हैं, लेकिन दुआ है कि कलाम सुनाने वाले दलेरी से कलाम सुनाएं। हम जो सुनने वाले हैं, हमें दूसरों तक इस कलाम को पहुंचाने की जरूरत है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। इसलिए हम सब जब यीशु मसीह के हुजूर में खड़े होंगे, चाहे